समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला।
राष्ट्र जिनकी भक्ति, राष्ट्र ही जिनकी पूजा और साधना, ऐसे महान वीरों को नमन करने के लिए समूचा राष्ट्र आज शहीदी दिवस मना रहा है। आज हम स्मरण कर रहे हैं और अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रहे हैं भारत माता के महान वीर सपूतों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, जिनकी आज पुण्यतिथि है।
मिट गई अपनी आन पे,
आज उसी को पहन के निकला,
पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई सुबह है और आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़े हैं न्यूज मैगजीन आज सवेरे के साथ। आज मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और साथ हैं सुभद्रा रामचंद्रन। नमस्कार सुभद्रा।
नमस्कार देवेंद्र। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। ऑफ कोर्स विद थॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड कंपैशन फॉर ऑल दोज हीरोज हु आर अराउंड टू प्रोटेक्ट अस, लेट अस बिगिन आवर सेशन ऑफ आज सवेरे विद सम न्यूज़ हेडलाइंस।
जी,
Supreme Court last night uploaded on its website an in-house inquiry report into alleged discovery of huge cash at the residence of Delhi High Court Judge Yashwant Verma. The inquiry report, submitted by Delhi High Court Chief Justice D.K. Upadhyay, contained information about official communications stating that 4 to 5 semi-burned stacks of Indian currency were found. The 25-page inquiry report also included videos and photographs of the firefighting operation at Justice Verma's residence on the night of Holi, March 14th, during which the cash was recovered. As recommended in the report, Chief Justice of India, Justice Sanjeev Khanna, has constituted a 3-member in-house inquiry committee to probe the allegations against Justice Verma. CJI Khanna has also directed the Chief Justice of Delhi High Court not to assign any judicial work to Justice Verma. In his response, Justice Verma has stated that no cash was ever placed in the storeroom either by him or any of his family members. He said the allegations of cash discovery at his residence clearly appear to be a conspiracy to frame and malign him.
केंद्र सरकार ने पहली अप्रैल से प्याज निर्यात पर 20% शुल्क वापस लेने का फैसला किया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार इससे किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा और उपभोक्ताओं के लिए प्याज की उपलब्धता भी बनी रहेगी। मंत्रालय ने कहा है कि रबी फसलों के अधिक उत्पादन की संभावना के बाद थोक और खुदरा कीमतों में कमी आई है। अनुमान के अनुसार रबी मौसम में प्याज सहित अन्य फसलों के अधिक उत्पादन से आने वाले महीनों में बाजार मूल्यों में और कमी आने की संभावना है। घरेलू उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए पिछले वर्ष 13 सितंबर से 20% का निर्यात शुल्क प्याज पर लागू किया गया था।
इंडिया हैज सेंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू बोत्सवाना इन द वेक ऑफ फ्लड्स इन द कंट्री। External Affairs Ministry said in a social media post that the first tranche of around 10 tons of assistance comprising essential medicines, surgical supplies, mosquito nets and water purifiers was dispatched for Botswana. Meanwhile, humanitarian assistance has also been sent to Kiribati to help strengthen the healthcare system of the country.
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET के ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की तिथि 24 मार्च तक बढ़ा दी है। परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि भी संशोधित कर 25 मार्च कर दी गई है। आवेदक 26 से 28 मार्च के बीच आवेदन पत्र के विवरण में संशोधन कर सकते हैं। एजेंसी पूरे देश के विभिन्न शहरों और देश के बाहर 15 शहरों में कंप्यूटर आधारित परीक्षा 8 मई और 1 जून के बीच आयोजित की जाएगी।
The first Indian Film Festival commences in Seattle, United States, marking the beginning of a 3-day celebration of Indian cinema. The event, held at the Museum of Pop Culture, featured excerpts from Prime Minister Narendra Modi's podcast with Lex Fridman, highlighting the Prime Minister's vision of the idea of India. The event was attended by several dignitaries, including U.S. Congresswoman Pramila Jayapal, King County Council member Sarah Perry, and Seattle Port Commissioner Sam Cho.
आज जम्मू के अभिनव थिएटर में तवी फिल्मोत्सव का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करेंगे। जम्मू कश्मीर सिने एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य फिल्म निर्माताओं, कलाकारों और रचनात्मक पेशेवरों को एक मंच प्रदान करना है जहां वो अपनी प्रतिभा दिखा सकें। ये लघु फिल्म महोत्सव न केवल उभरती प्रतिभाओं का समर्थन करेगा बल्कि सिनेमा के माध्यम से क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी बढ़ावा देगा। इस महोत्सव में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना है जो जम्मू कश्मीर में कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए एक नया मानक स्थापित करेगा। JKCA द्वारा नियुक्त जजों का एक पैनल प्रस्तुतियों का मूल्यांकन करेंगे और अंतिम परिणाम आज ही घोषित किए जाएंगे।
Getting to some sports now. In the inaugural match of Indian Premier League IPL T20 cricket, Royal Challengers Bengaluru RCB defeated Kolkata Knight Riders KKR by 7 wickets at Eden Gardens in Kolkata last night. We have a report.
The 18th season of IPL kicked off last evening with a grand opening ceremony consisting of Shreya Ghoshal's mesmerizing voice, Disha Patani's stellar performance and Karan Aujla's signature swag, along with Shah Rukh Khan's unstoppable charisma. The opening match was played between KKR and RCB, where RCB's skipper Rajat Patidar won the toss and invited Ajinkya Rahane's KKR to bat first. As a result, the home side made 174 for 8 in stipulated 20 overs. In reply, RCB overhauled the target in the 17th over, riding on a 95-run opening partnership between Virat Kohli and Philip Salt. Chase master Kohli, who was playing his 400 T20 match, remained not out on 59. RCB star Krunal Pandya got player of the match for his impressive spell, taking 3 wickets. Today, Sunrisers Hyderabad will take on Rajasthan Royals at Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad from 3:30 p.m. While in another clash of the day, arch-rivals Chennai Super Kings will face Mumbai Indians at M. H. Chidambaram Stadium in Chennai from 7:30 p.m. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
The third day of the Khelo India Para Games 2025 witnessed intense competition, inspiring performances in New Delhi yesterday. In athletics, Deepthi Jivanji claimed the top spot in the women's 400 meters T20 category, while Monu Ganges won gold in the men's shot put F11 category. In women's para archery, Paralympic medalist Sheetal Devi advanced to the finals with an outstanding performance alongside rising para archer Payal Nag. Speaking to Akashwani News, Sheetal Devi expressed excitement about competing in the Khelo India Para Games, calling it a valuable opportunity to face up at top athletes and gain experience.
बहुत ही अच्छा लगता है मुझे खेलने से. जैसे हम भी बाहर जाते हैं तो वहाँ पे भी हम देखते हैं बहुत सारे आर्चर आते हैं, उनके साथ खेलते हैं. यहाँ पे बहुत कम मिलता है खेलने के लिए, बट जितने टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें से हम पार्टिसिपेट करते हैं, खेलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है हमें मेडल जीतने उनके साथ. खेलो इंडिया तो होना ही चाहिए ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले खेलने को. यहाँ पे मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि किसी में कोई कमी नहीं होती, बस मेहनत की जरूरत होती है.
Paralympic medalist Rakesh Kumar also reached the para archery finals. He praised the Khelo India Para Games as a significant platform for young para athletes to showcase their talent.
पैरा गेम्स एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, ताकि जो भी नए प्लेयर्स आ रहे हैं और जो हम जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं उनके साथ पार्टिसिपेट करें, उनके साथ खेलें, ताकि उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़े और इंटरनेशनल लेवल पे पैरालंपिक्स एशियन गेम में मेडल ला के देश का नाम रोशन करें।
तुर्की के अंताल्या में भारत की प्रणति नायक ने फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक विश्व कप के कप में महिला वॉल्ट फाइनल में कांस्य पदक जीत लिया है। दो बार की एशियाई चैंपियनशिप पदक विजेता प्रणति ने कल शाम 13.417 का स्कोर बनाकर विश्व कप में अपना पहला पदक प्राप्त किया। अमेरिका की जयला हैंग ने 13.667 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक और अमेरिका की ही क्लेयर पीज ने 13.567 अंक के साथ रजत पदक हासिल किया। और अब समय है महानगरों से जुड़ी खबरों का, तो आइए जानते हैं चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु से क्या खबरें हैं सुभद्रा के पास।
यस देवेंद्र, वी आर स्टार्टिंग विद न्यूज फ्रॉम चेन्नई। द मद्रास हाईकोर्ट हैज सेंसर्ड तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन फॉर रिफ्यूजिंग टू प्रोवाइड एन ऑल्टरनेट जॉब टू अ ड्राइवर डिक्लेयर्ड अनफिट टू ड्राइव हेवी व्हीकल्स ड्यू टू स्पाइन सर्जरी। द जज ऑल्सो इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ ₹10,000 फॉर प्रोलॉन्गिंग द लिटिगेशन विद अनसब्सटेंशिएटेड एलिगेशंस। Bengaluru News Nav, Karnataka Industries Minister M.B. Patil has informed that two locations are identified for the second International Greenfield Airport for Bengaluru. The two locations are Kanakapura Road and on the Nelamangala Kunigal Road. The Karnataka State Industrial and Infrastructure Development Corporation has paid a fee of Rs 1.21 crore rupees to the Airport Authority of India to inspect these two locations and suggest their suitability. The multidisciplinary team of AAI will visit these two locations between April 7 and 9. The minister informed that the department has prepared documents including the revenue map of the locations, geographic features, maps from the Survey of India and operational details of the proposed airport as sought by the authority. Getting to Hyderabad news now. Union Coal Mines Minister and Telangana State BJP President G. Kishan Reddy has dismissed the opposition party's meeting in Chennai on delimitation as baseless political gimmick aimed at creating unnecessary panic among the public. Mr. Reddy said that the centre has already clarified that the procedures and regulations for delimitation have not yet been finalised. The meeting was attended by Congress, BRS, DMK and Communists. Mr. Reddy said this only exposes their political desperation. Minister further alleged the opposition parties are spreading misinformation about the BJP to divert attention from their own corruption. And Devendra, news from other cities from you?
Ji. दिल्ली विधानसभा ने डिजिटल शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाते हुए संसदीय कार्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा के क्रियान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कल नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। नेवा सभी विधायी कार्यों के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है जिसमें नोटिस प्रस्तुत करना, मंत्रिस्तरीय उत्तर, विधायी कार्य, चर्चा, समिति की रिपोर्ट और डिजिटल लाइब्रेरी तक पहुंच शामिल है। दिल्ली राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाला 8वां विधानमंडल बन गया है। इस अवसर पर श्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह व्यवस्था दिल्ली के लोगों के साथ साथ राष्ट्रीय राजधानी के विधायकों के लिए भी लाभप्रद होगी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कल वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए दिल्ली नगर निगम में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिल्ली विधानसभा के 14 सदस्यों विधायकों को नामित किया है। श्री गुप्ता ने बताया कि नियुक्त विधायक बजट निर्माण, नागरिक प्रशासन और शहरी शासन में निगम की सहायता करेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्वच्छता, बुनियादी ढांचे के विकास और अन्य नगरपालिका चुनौतियों का समाधान करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र कल से 28 मार्च तक चलेगा। भाजपा के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार बनने के बाद ये पहला बजट होगा। आगामी बजट के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने दिल्लीवासियों से सुझाव मांगे थे। इसी संबंध में नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अब तक हमें ईमेल के माध्यम से 3,303 सुझाव और व्हाट्सएप के माध्यम से 6,900 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्लीवासियों के बहुमूल्य सुझावों ने विकसित दिल्ली बजट 2025 को और सशक्त बनाया है। और मुंबई का रुख करते हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने कल बताया कि 2025-26 के लिए एमबीए सीईटी प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित धोखाधड़ी गतिविधियों में कथित रूप से शामिल होने के आरोप में 2 बीटेक छात्रों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। उन्हें मंगलवार को आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया। आरोपी collegeinside.org नामक एक वेबसाइट संचालित करते थे। उन्होंने कथित तौर पर छात्रों को विशिष्ट परीक्षा केंद्र चुनने के लिए राजी किया ताकि वे अल्ट्रा व्यूअर सॉफ्टवेयर का उपयोग करके दूरस्थ रूप से कंप्यूटर तक पहुंच सके और अंकों में हेरफेर कर सकें। आरोपियों ने दावा किया कि उन्होंने तमिलनाडु के एक प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया। उन्होंने छात्रों से 15-20 लाख रुपए की मांग की है। आगे की जांच जारी है। कोलकाता का रुख करें तो भारतीय मौसम विभाग ने आज कोलकाता और दक्षिण बंगाल के अन्य जिलों में बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। उत्तरी बंगाल में भी कुछ जिलों में बारिश होने के आसार हैं। कल रुक रुक कर बारिश हुई जिसकी वजह से कोलकाता और आसपास के जिलों में तापमान में गिरावट आई है जिससे आम लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। हालांकि आम और लीची के बौर को इस मौसम से नुकसान पहुंचा है जिससे कम उत्पादन होने की आशंका है। मुर्शिदाबाद, मालदा, नदिया आदि जिलों में आम और लीची की खेती यहां पर बड़े पैमाने पर की जाती है। और महानगरों से जुड़ी खबरों के बाद महानगरों के मौसम का हाल भी जान लेते हैं। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह के समय 16 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। दिन में पारा 34 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। मुंबई में भी आसमान साफ और शुष्क मौसम के बीच में तापमान 36 और 23 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। और कोलकाता के मौसम के बारे में हमने जिक्र किया ही खबरों में, यहां पर 19 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम और अधिकतम 30 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया जा सकता है और दिन में आंधी और बारिश की संभावना है। और सुभद्रा, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद का मौसम बताएं हमारे श्रोताओं को।
यस, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 27 डिग्री सेल्सियस, द मैक्सिमम विल बी अराउंड 34 डिग्रीज। Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The minimum temperature was 23 degrees Celsius. The maximum will be around 34 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky again with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between a minimum of 23 degrees and a maximum of 35 degrees Celsius.
जी, मौसम की बात हो गई।
yes,
और अब
again,
बात इतिहास की।
We are talking about मौसम again.
Yes, history में भी।
You're talking about weather. We have to talk about the weather today, Devendra. Today, yeah. You know, weather and climate-related problems are pressing challenges in our country and all over the globe. Predicting and understanding the weather pattern in day-to-day life is, of course, extremely a tough task and also a very important task for ensuring the safety and well-being of people all over the world. So every year on this day, that is 23rd March, the World Meteorological Organization commemorates the coming into force of the convention establishing the World Meteorological Organization on this day in 1950. So the 2025 celebration will celebrate the 75th anniversary of the World Meteorological Organization.
जी, और अपने श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि इस दिन का जो मनाने का उद्देश्य है, लोगों में मौसम और मौसम पर काम करने वाले संगठनों के प्रति जागरूकता पैदा करना। और इस दिन को वर्तमान परिस्थितियों से जोड़कर देखें तो हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की जो पारिस्थितिकी है, पर्यावरण है, बदल रहा है और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से तमाम जगहों पर ऐसे मौसम देखने को मिल रहे हैं जिनकी अपेक्षाएं, जिनकी संभावनाएं आमतौर पर नहीं होती हैं, जिससे लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। तो बड़े पैमाने पर मौसम पर्यवेक्षण टावरों, मौसम गुब्बारों, राडार, कृत्रिम उपग्रहों, उच्च क्षमता वाले कंप्यूटरों और विभिन्न अंकगणितीय मॉडलों की संलिप्तता से के सहयोग से मौसम की स्थिति को समझने में मदद मिलती है और इसी को समर्पित है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो कि आज के दिन मनाया जाता है।
एंड दिस ईयर सेलिब्रेशन विल सेलिब्रेट द 75th एनिवर्सरी ऑफ दिस डे एंड आल्सो द थीम दिस डे इज गोइंग टू बी द क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। ऑफ कोर्स द थीम हाईलाइट्स द नीड फॉर यू नो कोलैबोरेशन अमंग गवर्नमेंट्स, प्राइवेट सेक्टर्स एंड साइंटिफिक कम्युनिटीज टू स्ट्रेंथन अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एंड बिल्ड रेजिलिएंट कम्युनिटीज।
जी, और इतिहास में दर्ज अन्य घटनाओं की अगर हम बात करें तो आज ही के दिन वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और 1956 में इसी दिन पाकिस्तान दुनिया का पहला इस्लामिक गणतंत्र बना था।
1836 an invention that led to the evolution of the industrial age. Franklin Beale on this day invented the coin press, which was the first to be powered by steam. This revolutionary machine produced the first batch of coins that was delivered to the United States Mint. And 1840, an English-American scientist, chemist and photographer, John William Draper, is credited to be the first person to successfully take a picture of the moon, making it officially the first picture of the moon. And apart from this, he is also credited to take the first picture of a human being. And also another invention, an important one, 1857, Elijah Otis' first elevator is installed at Broadway, New York. And of course, this invention that spurred the possibility of modern buildings and skyscrapers, Otis Elevators, was established by Elisha Otis in this 1857. 4 years later, 1853, and then 4 years later in 1857, the company installed the first ever elevator. This elevator was located in New York City at a department store and was assembled to scale the 5 floors it possessed.
जी. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की पहली महिला कंपनी दुर्गापुर में गठित की गई थी। वर्ष था 1986 का और दिन आज का यानी 23 मार्च 1996 को ताइवान में पहला प्रत्यक्ष राष्ट्रपति चुनाव हुआ जिसमें ली तेंग हुई राष्ट्रपति बने थे। 2001 में रूसी अंतरिक्ष स्टेशन मीर की जल समाधि आज ही के दिन हुई थी और 2008 में भारत ने जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल अग्नि प्रथम का सफल परीक्षण किया था। और अब स्मरण कर रहे हैं उन महान विभूतियों को जिनका जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है। और इस क्रम में आज हम नमन कर रहे हैं तीन महान राष्ट्रनायकों, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का। 1931 का ये दिन जब भी याद आता है, हम सभी भारतीयों की आंखों से अश्रु छलक पड़ते हैं। श्रोताओं, 23 मार्च 1931 की जो घटना हमें रुलाती है, उसने उस दौर के भारत में क्रांति की ज्वाला भड़का दी थी। महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने देश के हर जनगण मन में स्वाधीनता की अग्नि जलाकर उसमें स्वयं को तपाकर देश के लिए जो किया वो श्रद्धा से भर देता है। हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सुप्रसिद्ध कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने ऐसी वीरताओं को समर्पित की है अपनी कुछ पंक्तियां। वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमालय से पुकार, है उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ऐसे देशभक्त जो भारत की स्वाधीनता की वेदी पर खुद को आहूत कर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पण का पर्याय बन गए। इन वीरों ने क्रांति की अलख जगाने के लिए अपने अंजाम की परवाह किए बिना जो किया, उसने देश के युवाओं को उसी राह पर चलने के लिए प्रेरित किया।
ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे, भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे, ऐ वतन।
And friends, their execution spurred many youth to take up the revolutionary path, playing a vital role in energizing the fight against the British Empire. And of course, today we...
जी, ये दिन वीर शहीदों के उस भाव को नमन करने का दिन है जिसने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और अन्यान्य वीरों को देश के लिए अपने को अर्पित कर देने के लिए प्रेरित किया। ऐसे वीरों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम उनके सपनों को साकार करने में, माँ भारती के गौरव को उत्कर्ष देने में अपना योगदान कर सकें। इन वीरों के भावों को अगर शब्द दिया जाए तो वे कहते हैं, हे मातृभूमि तेरे चरणों में सिर नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो तेरा ही नाम गाऊं, जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं, सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तजकर, वो पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाऊं, तेरे ही काम आऊं तेरे ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुझ पर बलिदान मैं जाऊं।
Let us salute these martyrs and pledge to uphold the values of freedom and justice they fought for.
जी, और 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए उग्र प्रदर्शन हुए थे। इन प्रदर्शनों में भाग लेने वाले वालों पर अंग्रेजी शासन ने जब लाठी चार्ज की, इसी लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और अब ये ऐसी घटना थी जिसने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उद्वेलित कर दिया। एक गुप्त योजना के तहत इन वीरों ने पुलिस सुपरिंटेंडेंट को मारने की योजना बनाई। 17 दिसंबर 1928 को करीब 4:15 बजे एएसपी स्टैंडर्स के आते ही राजगुरु ने एक गोली सीधी उनके सिर में मारी, जिसके तुरंत बाद वो होश खो बैठा। इसके बाद भगत सिंह ने 3-4 गोलियां दागकर उसके मरने का पूरा प्रबंध कर दिया।
Remembering a beautiful Hollywood legend, Liz Taylor, that's Elizabeth Taylor, the English actress of classic Hollywood cinema, passed away this day in 2011. Besides films, Taylor was a social activist, philanthropist, worked tirelessly for AIDS prevention, and was also a successful businesswoman with her own White Diamonds perfume and House of Taylor jewelry line. And a tribute to another elegant, beautiful actress, Joan Crawford, who was born this day in 1905. She was especially popular among women as she often portrayed hard-working middle-class women on screen, which resonated with the ladies in the audience who were struggling in the Depression era. Keith Reed, the lyricist for Procol Harum, whose poetic vision on the song White Shade of Pale made it a defining song of the 60s, passed away this day in 2023 at the age of 76. His lyrics were one of a kind and helped shape the music created by the band. Born in Herefordshire, Reed never performed with the Procol Harum, but was vital to the band's success writing all their lyrics until 2017. Alan Barton was a British singer, very popular pop rock English band Smokey, who sang lead and played rhythm guitar for both Smokey and other band Blacklees. In an unfortunate accident, he died this day in 1995 at the age of 41 from injuries incurred when Smokey's tour bus crashed during a hailstorm in Cologne, Germany. Barton has sung many of the band's hits, and here's a familiar track, 24 Years I've Been Living Next Door to Alice. Rick Ocasek, singer-leader of new wave rock band The Cars, would have celebrated his birthday today. Richard Theodore Ocasek was his full name, born this day in 1944. Real lead vocalist, rhythm guitarist and songwriter for The Cars. He led his new wave band to huge international success. Besides his work with The Cars, Ocasek was a record producer for several new wave bands. In 2019, he passed away after a surgical procedure at the age of 75. Who's gonna tell you when? It's too late. Who's gonna tell you things aren't so great? You can't go on thinking nothing.
सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर चिंतक और समाजवादी राजनेता राम मनोहर लोहिया को भी हम आज याद कर रहे हैं। उन्हें एक महान विचारक के रूप में याद किया जाता है। देश की राजनीति में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और स्वतंत्रता के बाद कई ऐसे नेता हुए जिन्होंने अपने दम पर भारत का रुख बदल दिया था, भारत की शासन व्यवस्था को प्रभावित किया था, और उन्हीं नेताओं में से एक थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर लोहिया को विरोधियों के बीच भी अपार सम्मान मिला। वो एक सहज और निडर राजनीतिज्ञ थे। उनमें संत की संतता, फक्कड़पन, मस्ती, निर्लिप्तता और अपूर्व त्याग की भावना थी। उनका कार्यक्षेत्र था समाज, और अपने कार्यक्षेत्र को जनमंगल की अनुभूतियों से वो महकाना चाहते थे। वो चाहते थे कि व्यक्ति व्यक्ति के बीच कोई भेद, कोई दुराव और कोई दीवार न हो।
Birth anniversary of Indian poet Nalini Bala Devi, who was a very famous author and poet from Assamese literature. She won the Sahitya Academy Award for her collection Laknanda and was also given the Padma Shri Award by the Indian government for her contribution to Indian literature. And happy birthday to the great Chaka Khan, born March 23rd, that is this day, 1953. Chaka Khan's real name is Yvette Marie Stevens. For nearly 5 decades in the spotlight, Chaka Khan has virtually defined the term soul diva through a string of memorable soulful performances and a singularly strong personality, both as a member of Rufus and as a solo artist.
और इसके साथ ही अब हम चाहेंगे आप सभी से अनुमति आज सवेरे न्यूज मैगजीन प्रोग्राम को यहीं संपन्न करने की, लेकिन आप लगातार बने रहिए आकाशवाणी समाचार के साथ।
स्टे ट्यून्ड, वी आर कमिंग अप नाउ विद समाचार प्रभात, हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।
नमस्कार।